بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 102 سے 104 تک کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور مسلم رہتے ہوئے ہی مرنا، اور تم سب مل کر ایشور کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بکھرو نہیں، اور اپنے اوپر ایشور کی اس وبھوتی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے شترو تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پریم جگایا، تو تم اس کی وبھوتی کی چھایا میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جیسا کہ تم نرک کی کگار پر تھے اور ایشور نے تمہیں اس سے مکتی دلائی۔ ایشور اپنی نشانیوں کو اس پرکار تمہارے لیے اسپشٹ روپ سے ورنت کرتا ہے کہ شاید تم لوگ مارگ درشت ہو جاؤ، اور تم مسلمانوں کے بیچ ایک ایسا گٹ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا نمنترن دے، اچھے کاریوں کی اور آمنترت کرے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، آج شکروار ہے، محرم کی 7، اگست کی 5 اور مرداد کی 14 تاریخ۔ کارکرم میں شمع کیجیے گا۔ کارکرم میں پہلے آپ سماچار سنیں گے، پھر راجنیتک چرچا پیش کی جائے گی، اس کے بعد محرم کا وشیش کارکرم ہوگا، اور سبھا کے انت میں ہم آپ کو اسلامی مانواधिकार دیوس پر وشیش کارکرم سنوائیں گے۔ یہ تھی روپ ریکھا۔ آپ کچھ ہی چھڑوں میں سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج کے پرمکھ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی نے کہا ہے کہ بیت المقدس سوتنتر ہو کر رہے گا۔ وینا میں ایران تتھا 5 دیشوں کے پرتندھیوں کے بیچ پرمانو وارتا آرمبھ ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں محرم میں شیعہ مسلمانوں کے ورد کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ بھارت میں لوکتنتر سماپت ہو چکا ہے۔ اور اب آپ وستار سے قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔ ایرانی راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے اویدھ زائونی شاسن کو اس کھیتر میں ایک گھناسپد تتو بتاتے ہوئے بیت المقدس کی سوتنترتا کو سنشچت کیا ہے۔ گروار کو فلسطینی پرتیرودھ سنگٹھن جہاد اسلامی کے پرمکھ زیاد نخالا نے ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کر کے کئی مدوں پر وچار ومرش کیا۔ اس افسر پر ایران کے راشٹرپتی نے زائونی دشمنوں کے ورد پرتیرودھ اور دڑھتا کے مارگ کو سروتم اور سب سے سفل مارگ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پشچم ایشیا میں فلسطین کے لیے شیتری راشٹروں کا سمرتھن واسطو میں امریکی اور زائونی شڈینتروں اور یوجناؤں کے راستے کی سب سے بڑی بادھا ہے۔ راشٹرپتی رئیسی نے کہا کہ اسرائیل کے کمزور ہونے کا کارن تتھا کتھت سمجھوتے نہیں ہیں، بلکہ پرتیرودھ اور دڑھتا کا مارگ ہے جس نے اسے ہر دن پہلے سے ادھک کمزور کیا ہے۔ راشٹرپتی نے کہا کہ دنیا میں فلسطین کے سمرتھکوں کی امیدوں کو جگایا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے یہ بھی کہا کہ اویدھ زائونی شاسن کلپنا کر رہا ہے کہ وہ شیتری سرکاروں کے ساتھ سمبندھ بحال کر کے اپنے لیے ایک رکشا کوچ تیار کر لے گا، لیکن ایسا نہ تو ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ آسٹریا کی راجدھانی وینا میں اسلامی گڑتنتر ایران اور 5 دیشوں کے پرتندھیوں کے بیچ نئے سرے سے وارتا آرمبھ ہوئی ہے۔ ایران سے پرتبندھ ہٹانے اور 2015 میں ہوئے پرمانو سمجھوتے کے نوینی کرن کے ادیش سے گروار کو ایک بار پھر وینا میں وارتا آرمبھ ہوئی۔ اس کے علاوہ ایران کے پرمانو وارتاکار اور ودیش اپ منتریوں میں अली अकबर कनी ने भी यूरोपीय संघ के विदेश नीति के उप प्रमुख एनरिक मोरा से भेंट वार्ता की। इस वार्ता के बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के विदेश सचिव से भी मुलाकात की, जिसमें परमाणु वार्ता की ताजा स्थिति पर चर्चा हुई। वियना पहुंचने के तुरंत बाद अली बाकरी कनी ने रूस के शीर्ष परमाणु वार्ताकार से भी मुलाकात की। तेहरान स्थित इमाम खुमैनी हुसैनिया अर्थात इमाम बाड़े में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों का गम मनाने के लिए आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई की मौजूदगी में एक शोक सभा आयोजित की गई। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के मौके पर करबला के शहीदों का गम मनाने के लिए इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई की मौजूदगी में गुरुवार 4 अगस्त को तेहरान स्थित इमाम खुमैनी हुसैनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों के लिए ये शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा को तेहरान के इमाम जुमा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सिद्दीकी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पाप इच्छाओं की गुलामी और शैतानी ख्यालों से मुक्ति का द्वार बताया। उन्होंने कहा कि करबला दुनिया के पीड़ितों को ये पाठ देती है कि अत्याचारियों के खिलाफ ईश्वर पर आस्था के साथ मैदान में आ जाना चाहिए और संख्या में कम होने के बावजूद साम्राज्यवादियों के मुकाबले में सत्य के मोर्चे को छोड़ना नहीं चाहिए। विगत की ही तरह इस साल भी मुहर्रम के पहले शुक्रवार को ईरान सहित दुनिया के 45 देशों में अली असगर दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अली असगर दिवस मुहर्रम के पहले जुमे को करबला में आशूर के दिन शहीद होने वाले मासूमों की याद में मनाया जाता है। करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर थे। उनकी उम्र केवल 6 माह थी। अली असगर दिवस के अवसर पर ईरान, भारत, पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, तुर्की और अफगानिस्तान सहित अन्य कई देशों में विशेष शोक सभाओं का आयोजन किया गया। इन शोक सभाओं में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को एक जैसे वस्त्र पहनाकर लाती हैं और उनके सिरों पर पट्टियां बांधती हैं जिन पर हजरत अली असगर का नाम लिखा होता है। इस तरह से वे पैगंबर इस्लाम के परिजनों के प्रति अपनी श्रद्धा को उजागर करती हैं। महिलाएं अपने छोटे बच्चों को अपनी गोदों में लेकर मरसिया और नौहे खानी करती हैं। सऊदी शासन ने इस देश में शिया मुसलमानों के विरुद्ध आशूर से पहले कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। जैसे जैसे रोज़े आशूर निकट आता जा रहा है, सऊदी अरब में रहने वाले शिया समुदाय के लिए परिस्थितियों को सख्त बनाया जा रहा है। वहां पर शिया बाहुल्य क्षेत्र कतीफ में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करके आज़ादारी में भाग लेने वालों को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये काम मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर किया जा रहा है। वहाँ पर एक कानून ये भी लाया गया है कि हर वो इमामबाड़ा जिसमें मजलिस की जाएगी उसके मालिक को मजलिसें शुरू होने से पहले ही पुलिस में जाकर इसका पंजीकरण कराना होगा और हर प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी का जिम्मेदार स्वयं को बताना होगा। इस बार सऊदी अरब में सड़कों पर परचम लगाने या पर क्षमा कीजिएगा इस बार सऊदी अरब में सड़कों पर परचम लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस बार किसी भी घर, इमारत या सार्वजनिक स्थल पर मुहर्रम से संबंधित बैनर या परचम नहीं लग सकता। मुहर्रम के बारे में सऊदी शासक के नए आदेशों से वहां के शिया समुदाय के लोग बहुत दुखी हैं। ज्ञात रहे कि सऊदी अरब में मानवाधिकारों का उल्लंघन एक सामान्य सी बात है। मानवाधिकार संगठन सऊदी अरब में किए जाने वाले मानवाधिकारों के हनन की आलोचना करते रहे हैं। यमन के एक नेता ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी हमलावर सऊदी गठबंधन के गैर कानूनी क्रियाकलापों का हिस्सा बन गया है। अलमसीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार यमन की नेशनल ऑयल कंपनी के प्रवक्ता ने युद्ध विराम अवधि के विस्तार के ठीक एक दिन बाद गैसोलीन ले जा रहे सी हार्ड जहाज को रोके जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी सऊदी अरब गठबंधन की अवैध कार्रवाइयों का साथ दे रहा है। यमन की तेल कंपनी ने दावा किया है कि हमलावर सऊदी गठबंधन द्वारा यह काम जहाज की तलाशी लेने और राष्ट्र संघ का लाइसेंस होने के बावजूद उठाया गया। यमनी ऑयल कंपनी का कहना है कि रुके हुए जहाज में 29,000 टन ईंधन है। यमन की तेल कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हमलावर सऊदी गठबंधन ने 2 महीने के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने सऊदी गठबंधन से रोके गए जहाज को तुरंत रिहा करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि सऊदी गठबंधन की करतूतों पर नजर रखने वाली यमनी समिति के अनुसार पिछले 2 बार के संघर्ष विराम में हमलावर सऊदी गठबंधन ने 14,000 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया उसे 8 वर्षों में खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज देश में सिर्फ 4 लोगों की तानाशाही है। भाजपा सरकार में सभी एजेंसियों और संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखा है। उन्होंने कहा कि हम महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन हमें जेल में डाल दिया जाता है। हमें संसद में बहस नहीं करने दी जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं जितना सच बोलता जाऊंगा उतना मुझ पर आक्रमण होता जाएगा लेकिन मैं अपना काम करूंगा, महंगाई पर बात करूंगा और बेरोजगारी पर भी बात करूंगा। जितना इन सब के खिलाफ बोलूंगा उतना मुझ पर आक्रमण भी होगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सभी के साथ है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे केंद्रीय एजेंसियों से डराया जाता है। ये बात लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है लेकिन एक दिन ये बात उनकी भी समझ में आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश की केंद्रीय एजेंसियां और अन्य संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष हुआ करती थीं। इन्हीं के सहारे विपक्ष भी खड़ा होता था लेकिन आज सब कुछ भाजपा के कब्जे में है। राहुल गांधी ने कहा जर्मनी की सभी संस्थाएं हिटलर के हाथ में थी, वहां भी चुनाव होते थे जो वो जीतता था। आज हिंदुस्तान की सभी संस्थाएं आरएसएस के हाथ में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग गांधी परिवार पर हमले क्यों करते हैं, क्योंकि गांधी परिवार एक विचारधारा के लिए लड़ता है। भारत नियंत्रित जम्मू व कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त किए जाने को अब 3 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर कश्मीर में बंद रखा गया जिसका प्रभाव आंशिक रहा। इसी संदर्भ में जम्मू व कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में शुक्रवार को प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। महबूबा मुफ्ती ने भारत की केंद्र सरकार से कश्मीरियों के छीने गए हितों को वापस किए जाने की मांग की। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए काला दिवस बताया क्योंकि उनके अनुसार इसी दिन जम्मू व कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए। इसी बीच ओआईसी ने ट्वीट किया है कि 5 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर के बारे में की जाने वाली एकतरफा कार्रवाई को आज 3 वर्षों का समय हो चुका है। इस बीच कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव सहित कई अवैध कदम उठाए गए हैं। ट्वीट में कहा गया है कि इस प्रकार के कामों से कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। ओआईसी के अनुसार हम कश्मीरियों के आत्मनिर्णय और उनके वैध अधिकारों का समर्थन करते रहेंगे। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान और आतंकवादी गुट दाइश के सदस्यों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दाइश के 4 सदस्य मारे गए।
अफगानिस्तान की राजधानी में तालिबान और आतंकवादी गुट दाइश के सदस्यों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें दाइश के 4 सदस्य।
श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त वर्ष 2019 को भारत की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था। इस अधिकार को समाप्त हुए आज 3 वर्ष पूरे हो गए और इसके विरोध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी, जिसे पुलिस ने असफल बना दिया। हालिया महीनों में जो अपराध यूक्रेन में हुए हैं, उसका आरोप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूक्रेन पर लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन की सेना जो टैक्टिक इस्तेमाल कर रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है और वो नागरिकों की जान के लिए खतरनाक है।
हालिया महीनों में जो अपराध यूक्रेन में हुए हैं, उसका आरोप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूक्रेन।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान और आतंकवादी गुट दाइश के सदस्यों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दाइश के 4 सदस्य मारे गए। तालिबान गुट के प्रवक्ता ने इस खबर की जानकारी देते हुए कहा है कि ये झड़प काबुल के कारते सखी क्षेत्र में बुधवार की दोपहर को हुई, जिसमें दाइश के 4 सदस्य मारे गए, जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कायम रिजवी।
अफगानिस्तान की राजधानी में तालिबान और आतंकवादी गुट दाइश के सदस्यों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें दाइश के 4 सदस्य मारे गए। तालिबान गुट के प्रवक्ता ने इस खबर की जानकारी देते हुए बताया है कि ये झड़प काबुल के कारते सखी क्षेत्र में बुधवार की दोपहर को हुई थी, जिसमें दाइश के 4 सदस्य मारे गए, जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। तालिबान गुट के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इसी प्रकार ये भी कहा कि दाइश के ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादारों पर हमला करने का भी इरादा रखते थे, जिसे विफल बना दिया गया। काबुल के पुलिस प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी आवा को बताया है कि 8 घंटे तक चलने वाली ये लड़ाई दाइश के अंतिम आतंकवादी के मारे जाने के बाद ही समाप्त हुई। पुलिस प्रवक्ता खालिद जदरान ने कहा है कि इस लड़ाई में तालिबान के 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि एक महिला पुलिसकर्मी सहित 2 पुलिसकर्मी मारे गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सुरक्षा व्यवस्था इस देश के दूसरे क्षेत्रों व प्रांतों से अधिक है, उसके बावजूद काबुल में तालिबान से दाइश के आतंकवादी तत्वों की लड़ाई इस बात की सूचक है कि दाइश के सदस्य काबुल सहित अफगानिस्तान के संवेदनशील क्षेत्रों में दाखिल हो चुके हैं। पिछले वर्ष अगस्त के महीने में अफगानिस्तान की सत्ता की बागडोर तालिबान ने संभाल ली थी। ऐसा लग रहा था कि तालिबान आतंकवादी गुटों से कड़ाई से पेश आएगा, परंतु गत एक वर्ष के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान के क्रियाकलाप इस बात के सूचक हैं कि अफगानिस्तान में आतंकवादी गुटों के साथ कड़ाई से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। शोचनीय बिंदु यह है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादी गुटों के साथ कड़ाई से पेश नहीं आया गया तो इस देश में आतंकवादी गुटों का साहस बढ़ेगा और वे निसंकोच आतंकवादी हमले करते रहेंगे। यहाँ पर इस बात का उल्लेख बहुत जरूरी है कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी की सरकार गिराई थी और वे अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे, तब उसने वादा किया था कि वो देश के समस्त अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाएंगे और पूरी ताकत से उन गुटों का मुकाबला करेंगे जो लोगों की जान और सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे। गत एक वर्ष तक अफगानिस्तान में तालिबान के क्रियाकलापों और वादों पर ध्यान दिया जाए तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि तालिबान दाइश सहित किसी भी आतंकवादी गुट से कड़ाई से पेश नहीं आ रहा है।
श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त वर्ष 2019 को भारत की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था। इस अधिकार को समाप्त हुए आज 3 वर्ष पूरे हो गए और इसके विरोध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी, जिसे पुलिस ने असफल बना दिया। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के विशेष इख्तियार समाप्त किए जाने के 3 वर्ष मुकम्मल होने पर आज घाटी के बेशतर क्षेत्रों में बंद का प्रभाव आंशिक रहा। श्रीनगर के भीतरी नगर में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद थे, जबकि श्रीनगर के बालाई क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बंद का आह्वान था। घाटी के अन्य क्षेत्रों से भी यही सूचनाएं प्राप्त हुई है। इस बीच भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज अपने साथियों के साथ श्रीनगर में एक प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने असफल बना दिया। महबूबा मुफ्ती और उनके साथियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे, जिस पर हुकूमत हिंद की ओर से 5 अगस्त 2019 को की गई आईनी तरमीमात के विरोध में नारे दर्ज थे। महबूबा मुफ्ती ने प्रदर्शन करते हुए नई दिल्ली पर बल दिया कि वो फौरी तौर पर हमारे छीने हुए हुकूक बहाल करें। उन्होंने इस अवसर पर भारत के विभिन्न जेलों में बंद कश्मीरी नजरबंदों की रिहाई का भी मुतालबा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए काला दिवस है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने एक तरफा तौर पर जो भी प्रयास किए वो हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा, इधर जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि आज जम्मू कश्मीर में शांति रही, जिसका ये मतलब है कि लोगों ने भारत सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 के लिए गए फैसले को स्वीकार किया है और वो सिर्फ इस क्षेत्र में तामीर तरक्की और खुशहाली देखना चाहते हैं। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
हालिया महीनों में जो अपराध यूक्रेन में हुए हैं, उसका आरोप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूक्रेन पर लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन की सेना जो टैक्टिक इस्तेमाल कर रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है और वो नागरिकों की जान के लिए खतरनाक है। यूक्रेन की सेना जो टैक्टिक इस्तेमाल कर रही है, उनमें से एक ये है कि हथियारों की सुरक्षा उन आवासीय क्षेत्रों में कर रही है जहां लोग रहते हैं। समीक्षा पेश करें साथी रविश जैदी।
हालिया महीनों में जो अपराध यूक्रेन में हुए हैं, उसका आरोप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूक्रेन पर लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन की सेना जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है और वो नागरिकों की जान के लिए खतरनाक है। यूक्रेन की सेना जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, उनमें से एक है कि हथियारों की सुरक्षा उन आवासीय क्षेत्रों में कर रही है जहां लोग रहते हैं। यह पहली बार है जब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अपराधों का आरोप यूक्रेन पर लगा रही है। इससे पहले पश्चिमी देश, विशेषकर अमरीका, यूक्रेन में होने वाले अपराधों का आरोप रूस पर लगाते थे और कहते थे कि इन अपराधों का जिम्मेदार रूस है, जबकि रूसी अधिकारियों ने बारंबार कहा है कि यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले सैनिकों व अर्धसैनिकों ने स्कूलों, यहां तक कि अस्पतालों में भी अपने मोर्चे बना लिए हैं। उसकी वजह यह है कि यूक्रेनी सैनिकों और यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले बलों को इस बात का ज्ञान है कि रूसी सेना स्कूलों और अस्पतालों को अपने हमलों का लक्ष्य नहीं बनाएगी, इसलिए उन्होंने निश्चिंत होकर इन जगहों को अपनी सैन्य गतिविधियों के ठिकानों में बदल लिया और इन जगहों पर जो भी घटनाएं होती हैं, उसका आरोप रूसी सेना पर मढ़ देती हैं। और किसी का ध्यान भी इस ओर नहीं जाएगा कि इन अपराधों को रूसी नहीं बल्कि यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले अंजाम दे रहे हैं। इसी प्रकार यूक्रेनी सैनिक आम नागरिकों का प्रयोग मानव ढाल के रूप में कर रहे हैं और उन्हें आवासीय क्षेत्रों को छोड़कर जाने भी नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें भली भांति ज्ञात है कि अगर लोग आवासीय क्षेत्रों को छोड़कर चले जाएंगे तो वे इसका प्रयोग मानवीय ढाल के रूप में کریں گے کیسے؟ اسی پرکار جو لوگ آواسیہ کھیتروں کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں یوکرینی بل ان کی اور فائرنگ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یوکرین کے آواسیہ کھیتروں اور نگروں میں رہنے والے لوگوں میں یہ دھارنا اتپن ہو گئی کہ جب بھاگنے سے یوکرینی بل ہی انہیں گولی مار دیتے ہیں تو بھاگنے سے نہ بھاگنا ہی بہتر ہے، شاید نہ بھاگنے سے ہی ان کی جان بچ جائے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے نیرکشکوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یوکرینی بلوں نے اس دیش کے 29 اسکولوں کو جنگ کا مورچہ بنا دیا ہے اور 29 میں سے 22 اسکولوں کا پریوگ جنگ کے مورچے کے روپ میں کر رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پشچمی و یوروپی اس بات سے اوگت نہیں ہے کہ یوکرینی سینک اس دیش کے اسکولوں و اسپتالوں کا پریوگ جنگ کے مورچے اور عام ناگرکوں کا پریوگ مانو ڈھال کے روپ میں کر رہے ہیں؟ جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ یوکرین کا سمرتھن کرنے والے پشچمی و یوروپی دیش بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوکرینی سینک روسی سینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان دیشوں کو یہ بھی پتا ہے کہ یوکرینی سینکوں و لڑاکوں کا یہ کاریہ انتراشٹریہ قانونوں کا کھلا الگھن ہے۔ پرنتو پشچمی و یوروپی دیش جس طرح سے دنیا کے بہت سے معاملوں میں دوہرا ماپدن اپناتے ہیں، اسی طرح یہ دیش یوکرینی سینکوں کے کرتیوں کے بارے میں بھی دوہرے ماپدن سے کام لے رہے ہیں۔ بہرحال جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ روس یوکرین یدھ کا لمبا کھچنا سب سے مہتوپورن کارن پشچمی و یوروپی دیشوں دوارا یوکرین کا ویاپک سمرتھن ہے، اور یہی سمرتھن جان مال کی بھاری تباہی کا کارن بن رہا ہے، اور جب تک یہ سمرتھن اور دوہرا ماپدن جاری رہے گا تب تک روس یوکرین یدھ کے بند ہونے کی اپیکشا ترک سے پرے ہے۔
تو شوتا ساتھی رویش زیدی کی اسی سمیکشا کے ساتھ راج نیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو اب پیش ہے محرم کے بارے میں وشیش کارکرم۔
دوستو محرم کے بارے میں وشیش کارکرم لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور رویس زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو آج محرم کی ساتویں تاریخ ہے، ہم ایک بار پھر کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر ہاردک سمویدنا پرکٹ کرتے ہیں۔ کارکرم میں ہم امام حسین علیہ السلام کے بھیتر پائی جانے والی وشیشتاؤں کے بارے میں چرچا کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام سمست نیتک وشیشتاؤں کا پرتیک تھے۔ ان کے بھیتر اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی وشیشتائیں پائی جاتی تھیں۔ یہ ساری وشیشتائیں امام کے استتو میں رچ بس چکی تھیں، اسی کے ساتھ یہ بات کی سوچک تھیں کہ ان کا پرشکشن پیغمبر اسلام نے کیا تھا۔ ان کی کچھ وشیشتاؤں کو کربلا کے آندولن میں بہت ہی اسپشٹ روپ میں دیکھا گیا جس کا اتہاس گواہ ہے۔
امام حسین کی وشیشتاؤں میں سے ایک پوری نشٹھا کے ساتھ ایشور کی اپاسنا کرنا تھا۔ سوچھا سے پوری نشٹھا کے ساتھ ایشور کی اپاسنا کرنا اس کے پرشکشن کی اور سنکیت کرتا تھا۔ उपासना की एक विशेषता यह है कि वो ईश्वर के बंदों के आत्मा को ईश्वर की असीमित शक्ति से जोड़ देती थी। पवित्र कुरान के सूरह ज़ारियात की 17वीं और 18वीं आयतों में ईश्वर अपने नेक बंदों के बारे में कहता है कि वे लोग रात में कुछ देर सोते हैं और भोर के समय उठकर ईश्वर से प्रायश्चित करने लगते हैं।
ईश्वरी पहचान के बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक दुआ دعائے عرفہ کا الیکھ کیا جا سکتا ہے۔ دعائے عرفہ میں ایک استھان پر آپ کہتے ہیں کہ ہے ایشور، جس نے تجھ کو کھو دیا اس کو کیا ملا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے پھر کیا کھویا۔ نشچت روپ میں جو بھی تیرے استھان پر کسی دوسرے سے راضی ہو گیا اس کو بہت بڑا گھاٹا ہوا، اور جس نے تجھ سے اپنا منہ پھیر لیا وہ ہمیشہ حسرت میں رہ جائے گا۔
نو محرم کو شام کے سمے عمر سعد نے امام حسین کے ساتھیوں پر حملے کا آدیش جاری کیا۔ اس کے بعد امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ تم جا کر ان پاپیوں اور اتیاچاریوں سے کہہ دو کہ یہ حملے کو کل کریں۔ امام حسین نے اس کام سے اپنی ہاردک اچھا کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ ہے میرے بھائی عباس، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، تم گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور ان سے ایک رات کی مہلت مانگو، ان سے کہو کہ اگر ہو سکے تو آج کی رات حملہ کرنے سے رک جاؤ تاکہ اس رات ہم اپنے پالنہار کی ادھک سے ادھک اپاسنا کر سکیں۔ اس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھ کو نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور دعا کرنے میں بہت آنند آتا ہے۔ امام حسین کو ایشور کی بندگی سے اتنا ادھک لگاؤ تھا کہ انہوں نے خون کے پیاسے دشمنوں سے ایک رات کی مہلت اس لیے مانگی تھی کہ وہ اس رات ادھک سے ادھک اپنے پالنہار کو یاد کر سکیں۔
امام حسین کے بھیتر اتیاچار کے مقابلے میں سنگھرش کرنے کی بھاونا اتنی پربل تھی کہ جو ان کے انتم سمے تک باقی رہی۔ عاشور کے دن ارتھات 10 محرم میں امام حسین علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے لیے ایک بھاشڑ دیا۔ اس کے ایک بھاگ میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے منوبل اونچا رکھنے پر بل دیا۔ اپنے اس بھاشڑ میں امام حسین نے پناہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے اچھ لکش کو سمجھایا۔ آپ نے بتایا کہ میں انتم سانس تک اتیاچار کے ورد سنگھرش کرتا رہوں گا۔ انہوں نے ان سے بھی دھیر سے کام لینے اور ایشور پر بھروسہ رکھنے کا آہوان کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے دوستوں، آج کے دن تمہاری شہادت کے بارے میں ایشور نے اپنی سہمتی جتائی ہے، بس تم لوگ پرتیروت کرو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام حسین کے سمن میں ایک کتھن پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوتر قرآن کے سورہ فجر کو اپنی نمازوں میں پڑھتے رہو، کیونکہ یہ سورہ امام حسین سے سمبندت ہے۔ جو بھی اس سورے کو پڑھے گا وہ قیامت کے دن امام کے ساتھ ہوگا۔ اس کتھن میں دھیان یوگی بندو یہ ہے، وہ یہ کہ قرآن کے سوروں میں سورہ فجر امام حسین علیہ السلام سے وشیش ہے۔ بنی امیہ کا یہ پریاس تھا کہ ایشوریہ مولیوں اور اسلامی شکشاؤں کو پوری طرح سے بھلا دیا جائے، لیکن امام نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ آپ نے اپنا خون دے کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے سرکشت کر دیا۔ آپ نے قیامت تک مانوتا کے مارگ کو سب کے لیے سپشٹ کر دیا۔
دوستو، امام حسین علیہ السلام کی وشیشتاؤں میں سے ایک دنیا سے دوری اور ایشور سے نکٹتا تھی۔ عاشور کے دن آپ نے اپنے انتم بھاشن میں اپنے چاہنے والوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہے پوتر لوگوں، دھیر سے کام لو، یہ جان لو کہ موت ایک پل کی طرح ہے جو تم کو پریشانیوں اور سمسیاؤں سے مکتی دے کر صدا باقی رہنے والے سورگ میں پہنچاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے جو یہ جاننا نہ چاہتا ہو کہ وہ کسی جیل سے نکل کر محل میں زندگی گزارے؟ یہی موت تمہارے دشمنوں کے لیے ایسی ہے کہ کسی محل سے نکل کر ایک یاتنا گرہ میں جا رہا ہے۔ میرے پتا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا تھا کہ سنسار مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ موت ایسا پل ہے جو ایمان والوں کو سورگ اور کافروں کو نرک میں پہنچا دیتا ہے۔
پیغمبر اسلام نے جو ویوستھا پیش کی تھی اس کو سویکار کرنے میں بھی مسلمانوں کی عزت ہے۔ اسلامی شکشاؤں کو لے کر یزید جیسے اتیاچاری شاسکوں کی سوچ اور ویوہار میں کھلا ورودھاباس پایا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو پیغمبر اسلام کے ہی ایک پرتنیدھی اور امام تھے، وہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ وہ یزید کے ورچسو کو مسلمانوں کے لیے ذلت سمجھتے تھے۔
स्पष्ट सी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उद्देश्य समाज में ईश्वर के नाम को सबसे ऊपर रखना और उन कामों का मुकाबला करना था जिनसे ईश्वरीय धर्म को कमजोरी हासिल हो। इमाम हुसैन ने उस संवेदनशील समय में अपनी पूरी क्षमता के साथ इस्लामी नियमों और शिक्षाओं को गुमराही से बचाने के प्रयास किए। इन्हीं बातों के कारण इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सूरे फज्र की 27 से 30वीं आयत तक मिज़दाक बताया गया है। इन आयतों में ईश्वर कह रहा है कि हे मुतमईन नफ्स, अपने पालनहार की ओर वापस आ जा, इस हालत में कि तू उससे राजी है और वो भी तुझसे राजी है, बस अब तू जन्नत में प्रविष्ट हो जाओ।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर हम ज़ियारत आशुरा के एक जुमले को पेश करने जा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि मैं क़यामत तक उसके साथ सुलह और शांति में हूँ जो तुम्हारे साथ शांति में है, और जो भी तुम्हारे साथ जंग में हैं मैं भी उसके साथ अंतिम सांस तक जंग में हूँ। वास्तव में हर व्यक्ति इस वाक्य को दोहराकर असल में ये समझाना चाहता है कि ईश्वरीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहना चाहिए, जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कर्बला के मैदान में किया।
जा रही है शह की सवारी, दुखिया सकीना, हाय रो कर पुकारी, अलविदा मज़लूम बाबा, हाय अलविदा मज़लूम बाबा, अलविदा मज़लूम बाबा, हाय अलविदा मज़लूम बाबा, अलविदा मज़लूम बाबा, हाय अलविदा मज़लूम बाबा। की सवारी दुखिया सकीना रोकर पुकारी, अलविदा मज़लूम बाबा, अरे अलविदा मज़लूम बाबा, किसी के होठों पे आहे, या दे रही है कोई दुहारी, लिपटी सुमो से कोई पुकारी, अलविदा मज़लूम बाबा, अलविदा मज़लूम बाबा। जा रही है शह की सवारी दुखिया सकीना रोकर पुकारी, अलविदा मज़लूम बाबा, अलविदा मज़लूम बाबा। तुमने जो बाबा लाशें उठाए, जख्मी बदन पर है तीर खाए, जो बाबा लाशें उठाए, जख्मी बदन पर है तीर खाए, जख्मी बदन पर है तीर खाए, रन को चले हो फिर तीर खाने, जख्मों से जब के है खून जारी, अलविदा मज़लूम बाबा, अलविदा मज़लूम बाबा। जा रही है शह की सवारी दुखिया सकीना रोकर पुकारी, अलविदा मज़लूम बाबा, अलविदा मज़लूम बाबा। मगर तेरी जिस दिन सारे ढली सारा लुटेगा खैमे जलेगी, में जलेंगे, मारेगा कोई हमको तमाचे, लूटेगा कोई चादर हमारी, अलविदा मज़लूम बाबा, अलविदा मज़लूम سواری دکھی سکینہ رو کر پکاری۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو ابھی آپ نے محرم سے سمبندھت ایک وشیش کاریکرم سنا اور اب پیش ہے ایک انیہ وشیش کاریکرم اسلامی مانواधिकार دیوس پر۔
दोस्तों कार्यक्रम इस्लामी मानवाधिकार दिवस के बारे में एक चर्चा लेकर उपस्थित हैं अहमद अब्बास और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों इस्लामी सहयोग संगठन OIC ने इस्लामी गणतंत्र ईरान के अनुरोध पर 5 अगस्त को इस्लामी मानवाधिकार दिवस के रूप में स्वीकार किया है। हर साल 5 अगस्त को इस्लामी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस्लामी मानवाधिकार दिवस मनाए जाने का उद्देश्य इस्लामी देशों के इस अधिकार को क्रियान्वित करना और वहाँ पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के तरीकों को खोजना है। आज 5 अगस्त है, इसलिए इस्लामी मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
सर्वज्ञानी ईश्वर ने सृष्टि की रचना बहुत ही अच्छे ढंग से की ताकि मनुष्य अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को बेहतरीन ढंग से पूरा कर सके। यही कारण है कि ईश्वर ने धरती और आकाश में जितनी भी चीज़ें हैं उनको मनुष्यों के हवाले कर दिया ताकि वो उसकी विभूतियों से सही ढंग से लाभ उठा सके। उसने मनुष्यों के हाथ खुले रखे ताकि वे अपने हिसाब से उसकी अनुकंपाओं से लाभ उठाएं। इतना सब होने के बावजूद सृष्टि और अपने अस्तित्व की वास्तविकता की व्याख्या में मनुष्य विरोधाभास और असमंजस्य का शिकार हो गया। सृष्टि के मार्ग पर सही ढंग से चलते तथा जीवन के बौद्धिक सिद्धांतों से निकलकर वो लोभ और लालच में ग्रस्त हो गया। इसका ये परिणाम निकला कि अपनी अनियंत्रित आंतरिक इच्छाओं का अनुसरण करके वो दूसरों के अधिकारों से खिलवाड़ करने लगा, जिसकी वजह से मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा पेश आया।
मानवाधिकार मानव का वो मूल एवं स्वाभाविक अधिकार है जो उसे हर जगह पर हासिल होना चाहिए। वर्तमान समय में संसार के महत्वपूर्ण विषयों में मानवाधिकार सबसे ऊपर है, जिसका हर स्थान पर सम्मान किया जाना चाहिए। इसके महत्व का अंदाजा इस बात से होता है कि विश्व की सभी सरकारें ये दर्शाने के प्रयास करती हैं कि उनके यहाँ मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है और मानवाधिकारों की समर्थक हैं। विभिन्न देशों की सरकारें ये काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हासिल करने के लिए करती हैं। पश्चिम में मानवाधिकारों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। फ्रांस की क्रांति के बाद सन 1789 में यूरोप का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ था।
वर्तमान समय में हम जिन मानवाधिकारों की बात करते हैं उनका संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से है। दूसरे महायुद्ध में की गई हिंसा और अत्याचारों के बाद संसार में मानवाधिकारों को उचित ढंग से समझने की भूमिका प्रशस्त हुई। सन 1948 में मानवाधिकार के आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हुईं कि वे मानवाधिकार के बारे में एक मसौदा तैयार करें। 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से पारित कर दिया। जिस समय वैश्विक मानवाधिकार घोषणा पत्र को पारित किया गया उस समय तक पश्चिमी जगत को इस्लाम में मानवाधिकारों की हकीकत के बारे में उचित जानकारी नहीं थी।
इस वास्तविकता को इतिहासकार एवं विद्वान रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट ने समझा। उनका मानना था कि सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता के आदर्श, आपसी भाईचारा, मानवीय समानता और लोगों के वोटों और परिषदों पर आधारित सरकार जैसी वे बातें हैं जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया और जिन्होंने अमेरिकी संविधान के गठन का भी मार्ग प्रशस्त किया। वे पश्चिमी की देन नहीं है बल्कि इन आदर्शों का स्रोत पवित्र कुरान में है, वे मानते हैं कि ये वास्तव में वही आदर्श है जिन्हें मध्ययुगीन यूरोपीय बुद्धिजीवियों ने कई विभिन्न स्रोतों जैसे स्पेन और सिसली के मुसलमानों से हासिल किए थे। वैश्विक मानवाधिकार घोषणा पत्र में जिस मानवीय गरिमा और आदर्श पर बल दिया गया है वह इस्लाम के मूल अधिकारों में शामिल है।
मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान के सूरह इसरा की आयत क्रमांक 70 में ईश्वर इस वास्तविकता की ओर संकेत करते हुए कहता है, और हमने आदम की संतान को प्रतिष्ठा प्रदान की और उन्हें जल और थल में सवारियों पर बिठाया तथा उन्हें पवित्र आजीविका प्रदान की और अपनी रचनाओं में से बहुतों पर वरीयता दी। पवित्र कुरान में मानवाधिकारों के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि उसमें कई बार इसका उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि मानवीय गरिमा का सम्मान करना इस्लामी शिक्षाओं में निहित है। मानवाधिकार के महत्व का उल्लेख पवित्र कुरान में उस काल में किया गया जब पश्चिम मध्ययुगीन काल से गुजर रहा था।
इस्लाम में जाति, रंग, वंश, धन संपत्ति या इसी प्रकार की किसी अन्य चीज को मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। इस्लामी शिक्षाओं में वरीयता का मानदंड तकवा अर्थात ईश्वरीय भय को बताया गया है। यह ऐसी विशेषता है जिसका संबंध मनुष्य की अन्य आंतरिक विशेषताओं से निकट का संबंध है। मानवाधिकारों के सम्मान को व्यवहारिक बनाने में इस विशेषता की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकवा ऐसी विशेषता है जो कभी भी वर्चस्व की ओर नहीं जाती। ये मनुष्य की आंतरिक इच्छाओं के मुकाबले में आकर उनकी मानवीय विशेषताओं की सुरक्षा करती है। मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी और जहां भी तकवे को काम, क्रोध और हिंसा से प्रभावित किया, वहीं पर युद्ध, हिंसा और अपराध हुए, जिसके परिणाम स्वरूप मानवाधिकारों का खुलकर उल्लंघन किया गया।
वर्तमान समय में राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के उद्देश्य से मानवाधिकारों को हथकंडे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पश्चिम का प्रयास हमेशा से ये रहा है कि वो विश्व के अन्य राष्ट्रों की संस्कृतियों को अनदेखा करते हुए अपनी उदारवादी नीतियों को मानवाधिकारों की आड़ में पूरी दुनिया पर थोप दे। हालिया कुछ दशकों के दौरान विश्व शक्तियां दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मानवाधिकारों को हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रही हैं। वर्तमान विश्व में हम युद्ध, हिंसा, बमबारी, नरसंहार, रक्तपात और इसी प्रकार के अपराधों को देख रहे हैं जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। इसका मुख्य कारण उन संगठनों की कमजोरी है जिन्होंने मानवाधिकारों की सुरक्षा की रट लगाकर लोगों को बहरा कर दिया।
वैश्विक मानवाधिकार घोषणा पत्र की अनुपयोगिता के कई कारक हैं, जिनमें से एक इस घोषणा पत्र का मनुष्य के उस मूल अधिकार को अनदेखा करना है जिसके अनुसार वो स्वतंत्र पैदा किया गया है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में विभिन्न राष्ट्र अत्याचारों और दमन का शिकार रहे हैं, किंतु मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले देशों ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मानवाधिकारों के रूप में मौजूद वैश्विक घोषणा पत्र में जो बातें वर्णित हैं वे पूर्ण रूप से मनुष्य के जीवन के केवल भौतिक आयामों से संबंधित हैं। इनमें मनुष्यों के नैतिक और आध्यात्मिक अधिकारों की चर्चा तक नहीं हुई है।
आज ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दूसरों पर अतिक्रमण समाज में नैतिक मूल्यों के न होने के कारण होता है। आज हम इस बात के साक्षी हैं कि पश्चिमी देशों की मनमानी कार्यवाहियों ने मानवाधिकारों के विषय को बुरी तरह प्रभावित किया है। मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र के 21वें अनुच्छेद की तीसरी धारा ये बताती है कि सरकार और सत्ता का आधार जनता का संकल्प है और समस्त वस्तुओं का मुख्य बिंदु मनुष्य है। इस्लाम धर्म के अनुसार समस्त सृष्टि का स्वामी महान ईश्वर है जो मनुष्यों सहित समस्त चीजों का रचयिता है। हालांकि इस्लाम में भी जनमत को सरकार को सुदृढ़ बनाने के महत्वपूर्ण तत्वों में बताया गया है। उसकी शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य उच्च स्थान व परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए विशेष प्रकार के कानूनों का पालन करके सृष्टि को अपने नियंत्रण में ले सकता है।
اس آدھار پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلامی مانو ادھیکار واستو میں ایسے لکش پورن ادھیکار ہیں جس کا کیندر بندو سرشٹی کا رچیتا ہے۔ اسلامی مانو ادھیکار گھوشنا پتر اسلامی راشٹروں کا وہ پریاس ہے جس کے انترگت اسلامی درشٹی سے انتراشٹریہ ستر پر لوگوں کے واستوک ادھیکاروں کو پریچت کروایا جائے۔ اسلامی مانو ادھیکار کے گھوشنا پتر میں 25 انوچھید شامل ہیں جس میں ایشور کی سب سے بہترین رچنا کے روپ میں مانو کے لیے مانویہ پرتشٹھا اور سداچار کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں مانو جیون کو جاری رکھنے اور مانویہ گریما کی رکشا کی آوشکتا سے سمبندھت باتیں ورنت ہیں۔
پشچمی مانو ادھیکاروں پر اسلامی مانو ادھیکاروں کی وشیشٹتا کے درشٹیگت اسلامی گڑتنتر ایران نے ورش 2008 میں یوگنڈا کی راجدھانی کمپالا میں اسلامی سہیوگ سنگٹھن OIC کے ودیش منتریوں کی بیٹھک میں اسلامی مانوادھیکار اور مانویہ پرتشٹھا شیرشک کے انترگت ایک پرستاؤ پرستت کیا تھا۔ یہ پرستاؤ اسلامی دیشوں کی سرو سمتی سے پارت ہو گیا جس کے آدھار پر 5 اگست کو اسلامی مانوادھیکاروں اور مانویہ پرتشٹھا دیوس گھوشت کیا گیا۔ اس دن کے پنجیکرن کا ادیش یہ ہے کہ مسلمان اور اسلامی دیش مانوادھیکاروں کے سمبندھ میں وشواسیوں کو اسلامی درشٹیکوڑوں کے بارے میں وستار سے بتائیں۔ دوستو کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو ابھی آپ نے جو کارکرم سنا وہ تھا اسلامی مانوادھیکار دیوس سے سمبندھت، جسے پیش کیا احمد عباس اور مریم مہر دادی نے۔ کارکرم آپ کو کیسا لگا اس بارے میں آپ اپنے وچار ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@wsirib.ir۔ تو اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔